یہود کی مخالفت میں यहूद भी इस दिन को मुकद्दस मानते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन नजात देने की फिरौन से, तो वो भी इस दिन को मुकद्दस मानकर रोज़ा रखते हैं। तो मैं जिंदा रहा तो दो रोज़े रखा, इसलिए उलमा ने मुस्तहब करार दिया कि 9, 10 या 10, 11 का रोज़ा रखें। ये इसके अलावा इस दिन का कोई अमल नहीं। अभी जो पूरा ढांचा पाँचों का पूरा मजहब इसी पर है, अगर ये उनके वहां से निकाल दें शियों का तो पूरा मजहब खत्म हो जाएगा। मुहर्रम के 10 दिन निकल जाएगा तो उनके मजहब में नमाज रोजों की इतनी अहमियत नहीं है और हज की इतनी अहमियत नहीं है जितनी मुहर्रम की अहमियत है। हालांकि दीन का हिस्सा नहीं, ये दीन का ही ठीक है। इस दिन के साथ इस्लाम की तारीख में वाकया जुड़ा हुआ है कि जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, इस दिन के साथ वो जुड़ा हुआ। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मातम नहीं है, हमारे यहाँ तो किसी का सगा बाप मर जाए, सगा बाप तो उसको भी 3 दिन से ज्यादा उसको गम मनाने की इजाजत नहीं, और वो भी दायरे में रहकर गम मनाएगा। अगर बेअख्तियार उसके आंसू निकलते तो निकालेगा, और बेअख्तियार नहीं निकलते तो मगर बच के आंसू नहीं बहाएगा लोगों को निकालने के लिए। अगर कोई अभी और कल आदमी है तो उसके आंसू नहीं निकलते, चाहे उसको कितना सदमा हो आंसू नहीं निकलते, तो उसको पाबंद नहीं किया कि बाप की मौत पर आंसू बहा या मालूम करे या उसकी सगी माँ की मौत पर आंसू बहा। हाँ बेअख्तियार निकलते हैं तो निकल जाएंगे आंसू, भरत नहीं है, उससे मना नहीं किया। लेकिन कोई मातम का सिस्टम कायम करे और मातम का कोई तरीका ईजाद करे, इससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने नौका करने से रोका। एक औरत का बच्चा मर गया था, गुजर रहे थे, वो जरा नौका कर रही थी, नोहे के अंदाज में कह रहे कि हाँ इसका बच्चा मर गया, ये हो गया वो हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि क्या हुआ, बोले मेरा बेटा मर गया। तो कहा सबर कर ले, अल्लाह तुझे अच्छा बच्चा देगा। वो औरत जानती नहीं थी कि अल्लाह के रसूल, तो कहने लगी तुझे क्या मेरा बेटा मरा, तो मुझे सदमा है। हाँ मेरे इस्लाम चले गए, लोगों ने उसको कहा कि अल्लाह के रसूल थे, उसको कह रहे तो कहने लगी मेरी भूल हो गई, तोबा तोबा कर ली उसने। और फिर हुजूर के पास गया और कहा या रसूल अल्लाह मैं सब्र करूंगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सबरु इंद सदमतिल उला, कि सब्र तो जिस वक्त सदमा पहुंचा उस वक्त सब्र। 2 दिन बराबर आपने ने नौका कर लिया और तीसरे दिन आकर कह रहा अब तो मैं सब्र करूंगा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे बाप की मौत हो गई, मेरा बच्चा मर गया, जवान बेटा चला गया, लेकिन अब क्या करें कि अल्लाह की रजा पर राजी। वो पहले दिन राजी रहने का जिस वक्त था उसका उसका तरीका समझाया, आदमी के आंखों से आंसू निकल आएंगे कोई हरज नहीं, उसको गम सदमा अफसोस होगा, उसकी हालत और कैफियत बदल जाएगी उस सदमे की वजह से, ठीक है। लेकिन 3 दिन तक ये करेगा, 3 दिन के बाद बतकल्लुफ वो जबान से कलमा नहीं निकलता, फिर भी बोलेगा, लोगों से बात करेगा, अपने गम को छुपावे, अब अपने गम को दिल में रखे, उसको जाहिर ना करे 3 दिन के बाद। अब 3 दिन के बाद उसको इजाजत नहीं कि मातम करें, मातम को पहले ही इजाजत नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं कि उसको हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे अली इब्राहिम का रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल हुआ, आप अलैहिस्सलाम उनको दफन कर रहे थे, तो कब्र में जब रखने लगे आपके आंखों से आंसू निकल आए, नरीना औलाद आपकी थी नहीं, एक लड़का पैदा हुआ उसका इंतकाल हो गया, और आप नबी थे, नबी थे आपके बाद आपकी नबूवत के काम की पूरी जिम्मेदारी थी। हर बाप को तमन्ना होती है मेरे बाद मेरी नरीना औलाद हो जो मेरा कारोबार संभाले, मेरा काम संभाले। हुजूर को कितनी तमन्ना होगी कि मेरे बाद नबूवत वाली जो जिम्मेदारी है और खत्मे नबूवत का जो काम है वो मेरे वाला संभाले। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में रखते हुए आपको सांस आ गए, तो सहाबा एकदम से ताज्जुब में पड़ गए, कह रहे यार रसूल अल्लाह आप भी नौहा करते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे बेटे की मौत पर मेरा दिल गमगीन और मेरे आंखों में आंसू जारी, लेकिन मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं। ये नौहा नहीं है, नौहा बतकल्लुफ होता है, बतकल्लुफ आके कपड़े फाड़ना है, चिर रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, बोल रहा है, तुम थे तो ऐसा हो रहा था, तुम चले गए तो ये नहीं होगा, हमारे कपड़े कौन लाएगा और चावल कौन खरीद के लाएगा और राइल का बिल कौन भरेगा और हमको घूमने पर, ये सारी चीजें जो बतकल्लुफ होती है, मतलब औरतों में राइज होता है, वो अल्लाह का फजल अपने यहाँ बहुत कम है, तो वो चीजें जो है वो नौहा की शक्लें हैं, कपड़े फाड़ना, बाल खोल देना और जोर जोर से रोना, आवाज़ें निकालना, तो ये सारी चीज़ों से इस्लाम ने मना किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लानत की ऐसी औरतों पर, नौका करने वाली औरतों पर। जाहिलियत का एक तरीका है, दौरे जाहिलियत में जब कोई मर जाता तो ऐसी रोने रोनाने रोने वालियाँ आती थी और फिर वो माहौल तैयार करती थी रोने का, फिर उसके बाद वो सब मिलकर रो देती। अभी भी बाज़ इलाकों में और ये तो पास मुहर्रम के मौके पर सब जमा हो जाए मातम करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के मातम के तरीके हैं, तो उस तरीके पर वो मातम करते हैं, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बतकल्लुफ काम था कि तकलीफ उठाने की, इसका अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं किया, अल्लाह ने तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह से आफियत मांग, आपकी आफियत मांग और तकलीफ भी आवे तो तकलीफ को ज्यादा जाहिर न करें, ये कहा कि आपके गम तकलीफ सदमे में आवे तो लोगों को न कहे, कि लोगों को कहने से आदमी का तकलीफ दूर नहीं हो जाए, उस तकलीफ को अल्लाह से कहे, अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर कर देगा। गम और सदमे को छुपाया जाता है, गम को सदमे को छुपाया जाता है, आदमी को कोई गम है आदमी पी जा रहा है उसको छुपा देगा, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे तकलीफ है हल कर दे। मखलूक को कहने से आदमी की कमजोरी लोगों के सामने जाहिर होगी, और जितने लोगों के सामने आदमी की कमजोरी जाहिर होगी, कमजोर और लोग दबाएंगे, कमजोर और कमजोर करेंगे, ये इंसानों की फितरत है। इसलिए इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया और आज़ादी दी कि अपने गम को छुपा लोगों के सामने जाहिर न करें। इस दिन के साथ एक तारीखी वाकया जुड़ा हुआ है, जिस दिन में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़लूमाना शहादत हुई कर्बला के मैदान में, तो हमारे इस्लाम में सिर्फ एक शहादत नहीं है, इनसे ज्यादा मज़लूमाना शहादत सैयदना उस्मान की हुई, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद, डबल दामाद, दो लड़कियां एक के बाद दीगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान को दी, जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अहले बैत होने के नाते और हुज़ूर की रिश्तेदारी होने के नाते हज़रत हुसैन का मकाम है कि अहले बैत में से है, हज़रत उस्मान हुज़ूर के दोहरे दामाद है, डबल दामाद है, और हुज़ूर के बाद हज़रत उमर, हज़रत अबूबकर, उमर के बाद तीसरे खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और उनके इस्लाम और मुसलमानों पर बड़े एहसान हैं हज़रत उस्मान के, उन्होंने अपना माल लगाया मुसलमानों पर, दिल खोल कर अपना माल लगाया। वो है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीबन 17-18 दिन के मुहासरे के बाद उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया लोगों ने, पब्लिक ने, कादियों ने, और 18 ज़िलहिज्जा को गुज़िश्ता महीने की 18 तारीख को हज के बाद 8वें दिन उनको उनके घर में जाकर लोगों ने शहीद कर दिया, और 18 दिन तक उनका मुहासरा किया, यहाँ तक कि उनके घर का दाना पानी बंद कर दिया, उनका दाना पानी बंद कर दिया। लेकिन इतनी मज़लूमाना शहादत के बाद भी तारीख इस्लाम में है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर कोई मातम नहीं किया गया, कोई मातम नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़दर आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब में फजर की नमाज में बख्शा मारा गया, और जिनकी मौत पर उस वक्त जिन्नात हो गए थे जिन्नात, ऐसे इंसाफ पसंद हाकिम और इंसाफ पसंद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए, इतनी बड़ी शहादत हुई लेकिन मातम नहीं मनाया गया। इस्लाम में मातम है ही, किसी के करीबी रिश्तेदार का इंतकाल या माँ बाप भाई बहन वगैरह, तो उसको कहा 3 दिन तक उसका सदमा करें, 3 दिन तक मसनून ताजियत है, पर मसनून ताजियत जिसको अपने कहते हैं जाकर ताजियत करना, वो 3 दिन तक है। कोई आदमी अगर मुकीम है, मुकीम यानी घर पर ही है, वो 3 दिन तक ताजियत कर रहे हैं, 3 दिन के बाद ताजियत नहीं मुकीम के लिए। कोई आदमी सफर में बाहर था और इनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, वो 3 दिनों के दौरान मकाम पर नहीं था, तो कहा देखा कि वो आदमी बाहर से सफर से आया, वो आदमी 4थे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 20वें दिन, महीने के बाद जाकर उनकी ताजियत कर सकता है, बाकी मसरूम ताजियत 3 दिन, 4थे दिन नहीं। अब पैसा पूरा हो गया, अब तो अमान में लगे कि अब वो मैं दुनिया से चला गया, उसके पीछे उसकी मीरास है, वो उसकी तकसीम करने में लग गया, ये दीन है उस वक्त का, खाली बैठकर बातें करने से मसला थोड़ा हल होगा। उस वक्त का दीन है कि जो आदमी मरने वाला दुनिया से चला गया या मरने वाली दुनिया से चली गई, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए का सामान प्रॉपर्टी छोड़कर गया है, तो उसके पीछे जो उसका माल है उसका उस माल की मीरास की तकसीम करें, जो उसके हकदार हैं उन हकदारों को पहुंचाकर उनको मीरास देकर खुश करें, उनके हक का माल है, कोई जाहिर चीज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उनका हक है, मैयत की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से, मरने वाले की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि जैसे आदमी नजा के आलम में चला जाता है उसका इख्तियार अपने माल में से खत्म हो जाता है, इसीलिए नजा के आलम में वसीयत कबूल नहीं होती, हालांकि माल उसी का है, लेकिन जैसे वो नजा में पहुंचा उस माल की मिल्कियत उसके हिस्से में से निकलकर धीरे धीरे वारिसों में अपने आप तकसीम होना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त का दीन ये, लेकिन चूंकि जहालत है, जहालत है, ये भी एक किस्म की जहालत है, जैसे और किस्म की जहालतें हैं कि आदमी को कलमा पढ़ना नहीं आता, एक जहालत है कि सूरह फातिहा नहीं आती, जहालत है कि नमाज पढ़ना नहीं आता, जहालत है कि कुरान नाजरा पढ़ना नहीं आता। अहकाम शरिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल अहकाम और अरकान से नावाकिफ होना ये भी जहालत है, क्योंकि दीन सिर्फ नमाज रोज़ों का नाम नहीं है, दीन इन तमाम चीज़ों का नाम है। और ज़रूरत है ये जहालत बगैर इल्म के ख़त्म नहीं हो, बगैर इल्म के ख़त्म नहीं हो। बहुत सारे मदरसे खोल लेने से जहालत खत्म नहीं होगी जब तक कि हर फर्द अपनी जहालत को दूर करने की कोशिश नहीं करे, हर फर्द अपनी जहालत दूर करने की खुद कोशिश करे, जैसे हर बीमार अपनी बीमारी को खत्म करने की खुद कोशिश करता है और अपने इलाज के लिए जाता है। मदरसों में चंदा दे देने से जहालत खत्म नहीं होगी, जहालत तो खुद आदमी जाएगा अपना इल्म लेने के लिए, वो एक दर्जे की एक लेवल है वो, कि जहां तलबा को दीन मिलेगा। वो जो पूरी दुनिया के सारे मदरसों का सर्वे करे, दुनिया भर का करेंगे तो और परसेंटेज कम हो जाएंगे, क्योंकि ममालिक में तो बहुत थोड़े हैं। हिंदुस्तान भर का जो सर्वे है उसमें हमारे 2% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, 2% 100 में से 2 बच्चे। तो वो 2% में हम चंदा लेकर काम पूरा कर लेंगे, वह हो गए ज्यादा खत्म हो जाएगी। एक तो हॉस्पिटल बनाकर कोई मुतमिन नहीं होगा कि भाई बीमारी खत्म हो गई। जहालत तो हर फर्द को अपना इल्म लेना पड़ेगा, अकायद का इल्म, इबादत का इल्म, मामलात का इल्म, मुआशरत का इल्म, अखलाक का इल्म, और एक सही इस्लामी निजाम को और एक सही इस्लामी मुआशरे को राइज करने की हर फर्द अपने बस से कोशिश करेगा और इन रसूमात के रिवाजात के दलदल से निकलेगा। हम इसलिए आए हैं कि लोगों को दुनिया की तंगियों से निकालें, कौम और समाज के बंधनों की तंगियां, ये जितनी चीजें वो सारे बंधनों में बंधे हुए। नहीं चाहता तब भी आदमी को नाचने जाना पड़ता है, मतलब करने जाना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, वो चाहता नहीं है फिर भी उसको हराम काम में शरीक होना पड़ रहा है, वो चाह नहीं रहा है। बहुत से सलीम फितरत लोग हैं जो इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कौम और समाज के बंधनों में ऐसे बंधे हुए हैं कि वो न चाहने के बाद भी उनको जाना पड़ता है। जैसे हमारे शादी ब्याह के रस्म रिवाज है, सलीम उल फितरत लोग इसको अच्छा नहीं समझते, पसंद नहीं करते हैं, न चाहने के बाद कर रहे हैं, ये जहालत है। और जहालत इल्म से दूर होगी, और इल्म जो है इल्म वो बहुत कीमती सरमाया है, इल्म बहुत कीमती सरमाया है। एक मरतबा अबू जाफर मंसूर बहुत बड़े आलिम के होते हैं, फिर बादशाह बन गए, बादशाह की मशहूरियत लग गई, तो एक दिन बहुत अफसोस कर रहे हैं, बहुत ताजुब से बैठे थे, दरबारी लोग आए कि हजरत आप आज बहुत अफसोस के साथ नजर आ रहे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई गम आपको कोई सदमा है? तो कहा मैंने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया है, लेकिन मुझसे इल्म लेने वाला को बादशाह बन गया कौन जाएगा इल्म पढ़ने में, तो मैंने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया लेकिन मुझसे पढ़ने वाला कोई नहीं, इसका मुझे गम है, इसका मुझे अफसोस है कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा और मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला। तो दरबारी चापलूस होते आप मतलब सब आ गए, कागज कलम लेकर खतना या अमीर उल मोमिनीन हमको पढ़ाई, हम पढ़ेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा कि तुम इस इल्म के अहल नहीं, बस तुम बेहिम कि तुम इस इल्म के अहल नहीं। इल्म के अहल तो वो लोग हैं जो कभी हिजाज में है, कभी यमन में है, कभी कूफा में है, कभी बसरा में है, कभी यहाँ है, लंबे लंबे सफर करते हैं, वो गुबार आलू कपड़ों वाले और बिखरे हुए बालों वाले होते हैं, और कभी वो हिजाज में नजर आते हैं, कभी यमन में होते हैं, कभी कूफा में होते हैं, कभी मिस्र में होते हैं। तुम थोड़ी सिलम के आओ, तुमको थोड़ा मिलेगा इस बादशाह के दरबार में, तुम आलिम बन जाओ। ये इल्म तलब वालों को मिलता है जो इसको तलब करे। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह बनी सिर्फ मुझसे मेरे आपसे नहीं, पूरे जहानों से अल्लाह बनी। जैसे वो गनी है सिफत इल्म, उसकी सिफत है अल्लाह, बगैर तलब के इल्म नहीं मिला करता, बगैर तलब के नहीं मिला। उसके लिए आदमी को पूरी तलब पैदा करनी है, और तलब पैदा करके फिर आदमी कोशिश करें कि अपनी जरूरत का इल्म मिले, तिजारत करना है तिजारत का इल्म मिले, मुआशरे में हर फर्द जी रहा है, ताजिर हो, मुलाजिम हो, मजदूर हो, और आदमी मुआशरे में जी रहा है, बीवी के लाइन का, बच्चों के लाइन का, माँ बाप के लाइन का, भाई बहनों के साथ रहने के लाइन का, मोहल्ले समाज में रह रहे हैं, हम सब जालिम बने हुए। कौम समाज में हम जी रहे हैं जिंदगी, हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ावें कि हम कहां कहां जुल्म कर रहे हैं, कहां कहां जुल्म कर रहे हैं, अपने दांत से हम मित्रों को ईजा पहुंचा रहे हैं, अपने अपने बोल से, अपनी आवाज से, अपने अपनी हरकतों से, अपनी चाल से, अपने असबाब से जालिम बने हुए रास्ते पर गुजर रहे हैं बिना जरूरत फोन बजाना भी लोगों पर जुल्म है, जो तकलीफ की चीज है लोगों को। आवाज का पॉल्यूशन इस्लाम ने तो बहुत पहले बताया, अब इस जमाने के लोग इसको कह रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन है, बेजा धुआं निकाल रहे हैं, डीजल की जगह केरोसिन हम इस्तेमाल करके जब धुआं निकाल रहे हैं गाड़ियों के जरिए से, ये पॉल्यूशन है, बीमारियों का जरिया है। अपने घर के आगे सवारी लाकर पार्क कर दी है, ये पॉल्यूशन है किस्म का, लोगों को ईजा का जरिया है। घर के आगे खाट बिछा दी, भाई रास्ता मुश्तरक है, इस रास्ते में पूरी इंसानियत का हक है, खाली मोहल्ले वाले का नहीं, रास्तों की किस्में होती है, सरकारी दस्तावेज के लखाण में लिखा जाता है कि ये आम रास्ता, ये खास रास्ता। खास रास्ता अगर आदमी का खुद का रास्ता बनाकर उसने छोड़ा है तो खास रास्ता उसके, या कॉलोनी के लिए खास किया हुआ है तो कॉलोनी वालों के लिए, और जो रास्ता आम है वो पूरी इंसानियत के लिए, खाली गोधरा वालों के लिए नहीं, बड़ोड़ा वालों के लिए, पूरी दुनिया का कहीं का कोई इंसान कोई जानवर गुजरना चाहे तो वहां से गुजर सकता है। अब हमने उसको लॉक कर दिया है, शादी के दिन मंडप बांध दिया, इधर दो रक्षे लगा दिए, उधर दो रक्षे लगा दिए, सुबह से लेकर शाम तक सबकी छुट्टी हो गई, अपना कोई सादा प्रसंग था अपने घर का और रास्ता लॉक कर दिया, अपने घर के आगे अपनी सवारी ऐसे पार कर रखी है कि आदमी गुजर नहीं सकता है वहां से, एक लाया, दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, पूरा रास्ता जाम हो गया। आदमी का 60 बार का मकान है और दूसरे 20 बार का कंपाउंड करके छोड़ा, उसके जो कानून है, एक तो शरीय कानून है, शरीय कानून के अलावा हुकूमत के बनाए हुए कानून है कि आदमी अपने घर की सीढ़ी अपनी जगह में बनाएगा या रास्ते पर बनाएगा। अपने घर में चढ़ने के दो स्टेप, बाहर ऊपर चढ़ने की सीढ़ी नहीं, घर के दरवाजा चढ़ने की जो सीढ़ी है वो आदमी अपनी जगह में बनाएगा, अपनी जगह, क्योंकि उसके इस्तेमाल की खास है वो पब्लिक के लिए नहीं, और रास्ता पब्लिक यूज के लिए, ये अपनी सीढ़ी खुद की अपनी जगह में बनाएगा, जैसे अपना टॉयलेट अपनी जगह में बनाया, अपना किचन अपनी जगह में बनाया, अपना बेडरूम अपनी जगह में बनाया, सारी चीजें ऐसे घर में चढ़ने की जो सीढ़ी है वो आदमी की अपनी जाती इस्तेमाल की, उसको खास कहेगा अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो अपनी जगह में बनाएगा, ये उसके मसाइल। लेकिन चूंकि जहालत ने देखा देखी है, उसने कंपाउंड बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, चौथे ने बनाया, पांचवे ने बनाया, 20 फुट का रास्ता छूटा हुआ था, इधर से 4-4 फुट, इधर से 4-4 फुट, दो तरफ से 8 फीट चौकअप हो गया, 12 फीट का रास्ता बचा है, उस रास्ते पर उसने वहां बाइक रखी, इसने वहां बाइक रखी, एक ने टेम्पी रखी, तीसरे ने लारी रखी है, चौथे ने पता नहीं क्या रखा है, पांचवे ने मुर्गियों का पिंजरा रखा है, और रास्ता रास्ता नहीं रखा, जंगल राज हो गया, कोई किसी को कहने वाला नहीं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह के वहां जवाब देनी, अल्लाह के ये हमारा इल्म है, ये इल्म है हमारा, ये इल्म नहीं हासिल किया इस वजह से हम जालिम है, मजलूम भी, एक जगह आदमी जालिम है दूसरी जगह मजलूम है, इससे जरूरत है कि अपनी जरूरत का इल्म लें, अपने औकात को जाया न करें, जिंदगी कीमती सरमाया है, जिंदगी का कीमती सरमाया, अपने कारोबार और कामकाज के अलावा के औकात को इल्म सीखने में लगावे, मस्जिद में तालीम के हल्कों में बैठे ताकि आखिरत की याद ताजा रहे, और आखिरत के डर से हम बचे, गुनाह से बचाने वाली कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोर्ट और दुनिया की जेल आदमी को गुनाह से नहीं बचा सकती, बल्कि अंदाजा किया कि आदमी जेल में जाकर छोटा गुनहगार था बड़ा मुजरिम बनकर आता था, छोटा चोरी करने वाला वहां से डकैतर बन के आता है, दुनिया की जेल गुनाह से नहीं बचाएगी, गुनाह से बचाने वाली ताकत तक्वा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है कि आदमी को अल्लाह का डर बचाएगा, कब्र के अजाब का खौफ बचाएगा, कयामत में अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने का खौफ आदमी को गुनाह से बचाएगा, उसके अलावा कोई ताकत नहीं आदमी को गुनाह से बचाएगा। छोटा बच्चा है जब तक छोटा है बाप से डरेगा, जब जवान हो गए बाप का डर खत्म हो जाएगा, मोहल्ले में दो चार आदमी दादागिरी करते हैं दो चार मरतबा उनसे डरेगा, एक आध मरतबा मुकाबला हो गया और जरा सामने वालों को दो चार मसीद करके उनका डर खत्म हो जाएगा, हुकूमत का डर है एक आध मरतबा जेल में चला गया जेल का डर खत्म हो जाएगा, पुलिस का डर है एक मरतबा पकड़ कर ले गए दो चार दिन उनकी सहूलत में रहकर आता है तो उनका डर खत्म हो जाता है, सिर्फ एक अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ है जो आदमी को हमेशा गुनाह से बचाएगा, और अल्लाह और बंदों के हुकूक के दरमियान में अदल करने का जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, हर जुमा के खुतबे में कहा जाता है कि लोगों के दरमियान में अदल करो, इंसाफ करो, ये आदमी की सिफत इंसाफ और अदल जाहिर होगी और आदमी दुनिया से दुनिया में ऐसा रहेगा कि हर एक को उससे फायदा पहुंचेगा, और जब दुनिया से जाएगा तो ऐसे जाएगा कि उसकी मौत पर इंसान तो इंसान जानवर भी हो रहे होंगे, अच्छा आदमी दुनिया से चला गया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, आदमी को बुरा बनने के लिए मेहनत और कोशिश नहीं है, पड़ा रहे पड़ा पड़ा बुरा बन जाएगा, लेकिन अच्छा होने के लिए, अच्छा बनने के लिए मुस्तकिल कोशिश और मेहनत है। मकाम पर जब तक है मस्जिद में तालीम के हलकों में, सीखने सिखाने के हलकों में, उलमा के पास जाकर अपना इल्म लें और दीन की नकल हरकत और मेहनत में अपने मोहताज बनकर अपनी जरूरत समझ कर शरीक दीनी मजलिसों में, दीनी बयानात में इसको बोझ न समझें, इसको ये हमारी जरूरत है, ये तो अल्लाह का करम है, एहसान माने अल्लाह का कि अल्लाह ने दीन के सीखने सिखाने को फ्री में रखा है। दीन के मसला पूछने का कोई पैसा नहीं लेता कोई मुफ्ती, वरना आप जाओगे वकील के पास कोर्ट के लिए सलाह लेने के लिए उसके पैसे, डॉक्टर के पास आप जा रहे हो केस निकाल कर वहां 500 रुपए की फीस दोगे तब वो एक मरतबा नब्ज पर हाथ रख के कहेगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, 50,000 का खर्चा है। दुनिया में कोई सर्विस फ्री में नहीं है सिवाय दीन, पानी का बोतल भी आपको फ्री 15 रुपए का मिलता है और ब्रेड के भी पैसे, सिवाय दीन के कोई सर्विस फ्री की नहीं। तो जो सारी चीजें फ्री में है वहां लाइन लग रही है, अखबार लेने के लिए लाइन लग रही है 5 रुपए का अखबार लेने के, अखबार वालों के पास, और दीन से लोग मुसलमान हो रहे हैं, दीन की मजलिस से हो रही है, दीन की महफिलें हो रही है, मस्जिदों में तालीम के हल्के हो रहे हैं, तो आदमी कोई काम नहीं फुर्सत के साथ है, तालीम हो रही है और कैसे पटन बोल के जा रहा है कि इसको दीन की कोई जरूरत नहीं। 5 मिनट 10 मिनट अगर शरीक हो रहा है तो रोजाना कुछ दीन की बातें सुनेगा लेगा, अंदर कुछ उतरेगा अंदर, तो आदमी के अंदर जब दिल के अंदर बात उतरती है तो अमल का दायिया जज्बा बनता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने औकात को महफूज करें, लायानी की मजलिसों और लायानी में अपने औकात को जाया न करें। आदमी जिस माहौल में रहता है तो उस माहौल का असर आता है। नबी पाक के हुजूर इस्लाम ने मिसाल दी कि आदमी खुशबू वाले के पास बैठेगा, खुशबू वाले के पास तो खुशबू उसको खुशबू नहीं मिली, लगाने को नहीं मिली, उसको इतना नहीं मिला तो खुशबू तो कहीं नहीं, सूंघता रहेगा खुशबू बैठा बैठा। और आपकी भट्टी के वाले के पास बैठा है तो वहां उसको कालक नहीं लगी तो धुआं तो कहीं गया ही नहीं। ऐसे माहौल का असर है, गंदे माहौल में, बुरे माहौल में, लायानी के माहौल में है, फहाशी के माहौल में है, तो वहां आदमी के दिलो दिमाग पर उसी के पर्दे पर्दे और तने जलती रहेगी और आदमी के दिल और उसकी फिक्र बिगड़ती रहेगी। और अगर आदमी अच्छे माहौल में मस्जिद के माहौल में है तो वहां पर आदमी की फिक्र सलीम होती जाएगी, अल्लाह का डर आएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आएगी, नमाज पढ़ने की रंगत और शौक आएगा, कुरान पढ़ने का जज्बा बनेगा। अभी हम देखें सुबह इशराक पढ़ने वाले मस्जिद में 8 से 10 आदमी होते हैं, 8 से 10, हालांकि हजारों मुसलमान है जो आसानी से इशराक पढ़ सकते हैं। तिलावत करने वाले रमजान में जब सब कर सकते हैं रमजान में, तो गैर रमजान में आधा पारा क्यों नहीं पढ़ सकते, आधा पारा रमजान में 5-5 पारे पढ़ रहे हैं तो गैर रमजान में आधा पारा क्यों नहीं पढ़ सकते। रमजान में जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे मस्जिदों में गुजारते हैं वो लोग गैर रमजान में 1 घंटा मस्जिद में क्यों नहीं गुजारते। इसलिए अपने माहौल को चेंज करें, अपने माहौल को तब्दील करें, बाजारी माहौल को खत्म करके मस्जिदों को आबाद करें। जुमा का दिन बरकत वाला अजमत वाला दिन, पहले कई मरतबा में सुना चुका, एक मरतबा एक मौलवी बगदाद में गया वहां पर, तो उसने देखा सुबह इशराक के कुछ देर के बाद सूरज थोड़ा चढ़ा, उसके बाद उसने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ एक तरफ से एक रास्ते की तरफ जा रही, एक ही तरफ सारे लोग जा रहे, तो उसने मालूम किया कि लोग कहाँ जा रहे थे, तो उसको बताने वाले ने बताया कि आज जुमा का दिन है, ये सारे लोग जुमा की नमाज के लिए जामा मस्जिद जा रहे हैं इशराक के बाद, इशराक के बाद, अभी तो जुमा की नमाज को 5 घंटे बाकी, और बताने वालों ने बताया कि सारे लोग जुमा पढ़ने के लिए जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अभी भी देखते हैं हरमैन में जुमा के दिन 10 बजे गेट बंद हो जाते हैं, जुमा के दिन 10 बजे सारे गेट बंद, और 10:30 बजे तो हरम से 2 किलोमीटर के रास्ते बंद कर देते हैं, गाड़ियां भी अंदर नहीं जाती 10:30 बजे से, और जुमा है 12:30 बजे। तलब वाले हैं तो पहुंच जाते हैं वहां पर, और यहाँ अजान के बाद भी मस्जिद खाली होना तो ये था। जुमा का दिन है आपकी सुबह से हदीस में मसनून अमल है, आम दिनों के मुकाबले में रोजाना आपकी 5 बजे उठता है तो वो आदमी जुमा के दिन 4:45 बजे कम से कम उठ जाए, और जुमा की तैयारी करें, जुमा की तैयारी करें, नमाज से अच्छा खासा वक्त लेकर पहले जितना हो सके जल्दी एक घंटा पहले दो घंटे पहले आवे मस्जिद में तिलावत करें, सूरह कलम पढ़े, दुरूद शरीफ की फजीलत है, जुमा की दिन हजरत से दुरूद पढ़े, कुरान की तिलावत करें, मस्जिद में बैठा रहे तब भी वो अजर से खाली थी। और जुमा के बाद जैसे जोहर के बाद की सुन्नतें हैं ऐसे जुमा के बाद की सुन्नतें मौकदा, सुन्नतें मौकदा। जुमा के दिन हमने चार रकात पढ़ लिया, दो पढ़ेंगे जुमा की दो रकात वाजिब पढ़ेंगे, उसके बाद जुमा के बाद छह रकात तो सुन्नत मौकदा, हमारे अहनाफ के यहाँ छह रकात सुन्नत मौकदा। जैसे जोहर में चार रकात पहले पढ़ते हैं, फिर चार रकात पढ़ते फर्ज, फिर उसके बाद दो रकात सुन्नत मौकदा पढ़ते हैं, अहनाफ के यहाँ जुमा के दिन चार, फिर उसके बाद दो जुमा की छह, और छह रकात जुमा के बाद की चार और दो सुन्नत, ये सुन्नत मौकदा। लेकिन वर्षों से मजमा आदि अच्छे पासे पासे दाढ़ी गोभी वाले पांच वक्त की नमाज की, लेकिन जुमा की सलाम फेर के गोया के मस्जिद मकरू हो गई। जुमा का दिन है, आदमी बैठे थोड़ी देर दुआ करें, अल्लाह का जिक्र करें, कुछ नहीं 100-200 ने तो पांच मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, जिस नबी ने पूरी जिंदगी हमारे लिए खपा दी 5-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, मस्जिद में ठहरेंगे क्या हमारा बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? अगर खाना बाकी है 10 मिनट ताखिर से खाएंगे भूखे नहीं मर जाएंगे, कामकाज के रोजाना लोगों के घंटे घंटे दो दो घंटे ताखिर हो जाते हैं। इसलिए आप हजरत से गुजारिश है कि जुमा के दिन का इहतमाम करें और जुमा से पहले जल्दी मस्जिद पहुंचे, जुमा के बाद की सुन्नतों की पाबंदी। पीछे वालों से खुशूस हमारी गुजारिश है पीछे वालों से, ये तो सुन्नत मौकदा, और जो आदमी सुन्नतों का अहतमाम नहीं करता अल्लाह ताला उसको वाजिबात के छोड़ने के गुनाह में मुबतला करता है, और जो आपकी वाजिबात की पाबंदी नहीं करता अल्लाह ताला उसको फराइज को छोड़ने के गुनाह में मुबतला कर देता है, फिर फराइज के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अभी खुतबा होगा, नमाज होगी, नमाज के बाद जितना अल्लाह को अपील से जिक्र करें दुआ करें, दुआ जिक्र का वक्त है नमाजों के बाद, और यही हमारा मकसद है जिंदगी है, और फिर उसके बाद अपनी सुन्नत पढ़े इत्मीनान से, और क्या जगह बदले कोई हरज नहीं है, आपने फर्ज यहाँ पड़ी जगह बदल कर सुन्नत पढ़ा करें, ज्यादा भीड़ है तो भीड़ में जगह बदलना जरूरी नहीं, अपनी जगह अपनी सुन्नत पढ़ लें और फिर उसके बाद इत्मीनान से निकले, जल्दी जाकर क्या मिलेगा बाहर, जल्दी जाकर क्या अंदर रहकर बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जुमा के बाद की अपनी सुन्नतों का इत्मीनान करें और अपनी सुन्नत पढ़े, अल्लाह तौफीक दे, एक मिनट सही दुआ करें, अल्लाह से ताल्लुक बनाए, कोई ऐसा मजमे में नहीं होगा जिसकी कोई हाजत कोई जरूरत ना, कोई ऐसा नहीं होगा, एक मिनट दुआ करें कि अल्लाह मेरी हाजत मेरी जरूरत है मेरी, दुरूद शरीफ पढ़े, अपनी हाजत अल्लाह से मांगे और फिर दुआ पूरी करके बात की जा रहे हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, और ये देने का वक्त है अल्लाह से, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होगी, ये अल्लाह से लेने का वक्त है। इससे गुजारिश है इहतमाम करें इसका कि जुमा के दिन जल्दी अच्छा, अभी तो पहले तो होता था कि बहुत से लोग जुमा के दिन सफेद कपड़ों में होते थे, उस वक्त अल्लाह के लोगों के पास कपड़े कम थे, कपड़े कम थे लेकिन अहतमाम करते थे लोग, जुमा के दिन का पास सफेद कपड़े पहनते थे, सफेद टोपी पहनते थे और इधर लगाते थे, और आधा घंटा पहले मस्जिद के वहां माहौल बनता था जुमा जुमा जुमा। अभी हमारे इस मजमे में देख रहे हैं कि 25% मजमा भी सफेद कपड़ों में नहीं है, हालांकि सफेद कपड़ा सुन्नत और कपड़ों की फरावानी है, कोई ऐसा नहीं होगा इसमें जिसके पास 10 जोड़ी से कम कपड़े और सबके पास शलवार कमीज है। पहले का मुसलमान हफ्ते भर की नहीं पड़ता था जुमा के दिन शलवार कमीज पहनकर मस्जिद में, और अब हफ्ते भर का नमाजी भी कोई लिबास ना रहा, कम से कम इतना भाई एक दिन के अजमत, जुमा का दिन हमारा बड़ा अजमत वाला दिन है, बड़ा अजमत वाला, हम इस दिन की हम अजमत करें, उस दिन सफेद कपड़े कुर्ता पजामा पहने। अभी देखो इतनी फरावानी का दौर है, कोई घर खाली नहीं होगा जहां 10-15 टोपियां ना पड़ी हो और रुमाल वाले अभी भी नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा पहले तो टोपी महंगी होती थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो रुमाल था उसी को बांध लिया लपेट लिया, अब यह है कि कोई ऐसा भी माल मार्केट में जाओ 25 रुपए की टोपी मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी टोपी मिलेगी, रोजाना 25 रुपए की तो बिरयानी खा लेता है, अगर जुमा के दिन टोपी खरीद ली अच्छी और उसको टोपी अपने सर पर रखकर इस दिन की आजमत, जैसे दूल्हा अपनी शादी के दिन अच्छे कपड़े सिलाता है, शेरवानी पहनता है और अच्छी टोपी नई खरीदता है, अंदर का बनियान और अंडरवियर भी नया खरीद कर पहनकर आता है, आज मेरी शादी है, जुमा का दिन आजमत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है, उस दिन के अहतमाम में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुमा के दिन मदीना मुनव्वरा में जब पानी की किल्लत और तंगी थी, लोगों के पास पानी नहीं हुआ करता था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुमा के दिन के गुस्ल को वाजिब करा दिया, लोग पानी की किल्लत की वजह से जुमा के दिन गुस्ल नहीं करते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में गुस्ल को वाजिब करा दिया कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब, फिर बाद में जब पानी की फरावानी हुई और लोगों ने आम दिनों में गुसल करना शुरू कर दिया तो फिर ये वजू खत्म हो गया और जुमा के दिन के गुसल की सुन्नत होना बाकी रहा कि जुमा के दिन का गुसल सुन्नत है। उसमें भी फुकहा ने देखा कि जुमा की नमाज के लिए गुसल कराया, यानी जिस गुसल से आदमी जो गुसल करके आया है वही वजू बाकी रखे और उसी गुसल के वजू से आपकी जुमा की नमाज। सफेद कपड़े हुजूर अलैहिस्सलाम एहतिमाम के साथ जुमा के दिन का जोड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अलग हुआ करता था, वो जोड़ा जुमा के दिन पहनते थे। सुन्नत है, ये सारी सुन्नतें तर्क हो गए, जुमा के दिन की आसमत खत्म हो गई, इतवार के दिन की आसमत कायम होकर अभी देख रहे हैं कि इतवार के दिन शिमला बंद हो जाता है। इतवार के दिन उनको पूछा भाई क्यों ऐसा हो रहा है, बोले धीरे धीरे माहौल बन गया कि लोगों की शादियां इतवार को हो रही है इसलिए शिमला बंद हो रहा है और लोग इतवार को घूमने जा रहे हैं होटलों में खाने जा रहे हैं। तो वो हालांकि शायर में से जुमा का दिन, शायर इस्लाम में से जुमा की आजमत, जुमा के दिन की आजमत, जुमा के दिन अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, जल्दी मस्जिद में आना, ये सारी जुमा की सुन्नतें हैं। जुमा के दिन सहाबा जुमा के बाद खाना खाते थे, आम दिनों में उनका मामूल था कि खाना खाकर तहलुला करके फिर जोहर पढ़ते थे, लेकिन जुमा के दिन वो चूंकि जल्दी मस्जिद में आ जाते थे इसलिए जुमा के दिन जुमा के बाद खाना खाते थे फिर तहलुला करते थे। इतने ज्यादा आसमत वाला दिन, इतना आसमत वाला दिन है और इसकी आसमतें थी पहले, नई चीज नहीं है। पुराने लोग जुमा के दिन सफेद कपड़े पहनते थे, वो एक जोड़ा अपने पास रखते थे भाई जुमा के दिन पहनने का, खुशबू लगाते थे, जल्दी आते थे। और अभी हमारे इस मजमे में कचरे के कपड़े नजर आ, लाल पीले काले पता नहीं कैसे कैसे शर्ट पहने हुए नजर आ, और कितने लोग हैं जिनके सर पर अभी टोपी ने रुमाल लगा हुआ। इसलिए आप हजरात से गुजारिश, ये मामूली चीज है नहीं है, जहां शायर खत्म हो जाते हैं वहां से धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दीन भी खत्म हो जाता है। इसलिए उलमा ने शायर की हिफाजत की, शायर को महफूज रखा, आइंदा जुमा से इसका खुद भी अहतमाम करें, अपने बच्चों का अहतमाम करवाएं तो उनको भी अच्छे कपड़े पहनाएं और टोपी पहनाएं, सर पर खुद टोपी पहने उनको टोपी पहनाएं। जुमा के दिन रोजाना जोहर की नमाज 1:10 पर इमामत 1 बजे आते हैं, कौन एक को आते हैं जुमा के दिन 12:30 से मस्जिद में आवे, तिलावत करवाएं, कोई सूरह कहफ पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और कोई आमाद में लगा हुआ कोई सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, इसका एहतमाम करें। खुशबू लगा, सुन्नत है खुशबू लगाना, अच्छी चीज है, सारे नबियों की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जुमा के दिन खुशबू लगाना। और ये खुशी का इजहार करें, अपनी खुशियों को इसी में इतनी बांटें कि फिर हमें इतवार की खुशी का इंतजार ना, फिर हमें किसी की शादी में अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो, ठीक है शादी में जा रहे हैं ठीक कपड़े पहनकर जाएंगे, लेकिन जुमा का दिन उस शादी से बड़ा हुआ दिन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाहों की मजलिसों से ज्यादा दीन के एतबार से जुमा के दिन और ईदेन के दिनों का एहतमाम किया है और दिनों का इतना एहतमाम नहीं किया। इससे कोशिश करें कि जुमा के दिन हमारे शायर में से जुमा के दिन जल्दी आवे और बकिया जितनी सुन्नतें हैं वो भी अपने सर पर रखे, टोपी सफेद कपड़े नहीं है एक एक जोड़ी सिलवा दें और जुमा के दिन खास उसको पहने ताकि उस बहाने अल्लाह तौफीक दे देवे कि हुजूर अलैहिस्सलाम वाला वो लिबास जो हुजूर को पसंद था सफेद लिबास वो अल्लाह करे कि हमारी मुस्तकिल जिंदगी का जुज बन जावे। रंगीन कपड़ा पहनना नाजायज नहीं है लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफेद कपड़े को पसंद किया तो कम से कम जुमा के दिन इत्तिबाए सुन्नत में कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को सफेद कपड़ा पसंद था, लाओ जुमा के दिन हम सफेद कपड़ा पहने। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है आज ही से इसकी इब्तिदा करें, जो सुन्नतें अभी काफी है नमाज पूरी पढ़े, नमाज के बाद की सुन्नतें पढ़े, दुआ करें, जिक्र करें, चाहे 2-5 मरतबा सही दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े, असर के बाद मुस्तकिल 80 मरतबा एक दुरूद की फजीलत है उसका एहतमाम करें और बाकी आइंदा जुमा से बकिया जो सुन्नतें मैंने अर्ज की है उसको अभी से याद रखें, अपने घर वालों में भी उसका तज़किरा करें और कोशिश करें कि तमाम सुन्नतों के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।